चिन्ते विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य ब्रजमागते। वाद यंत्र बज उठे, ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीरों में दही खीर मक्खन और जल का मिश्रण छिड़क कर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और परस्पर एक दूसरे के शरीर पर लेप किया। इस प्रकार का जो है उत्सव है, मक्खन लगाते एक दूसरे के मुंह पर, जो ब्रजवासी हैं मक्खन लगाते एक दूसरे के मुंह पर और दही खीर और पानी के छिड़काव करते एक दूसरे के ऊपर। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबु भी आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीते सचिक्षिपुः। तात्पर्य में लिखा है, इस कथन से हम समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले दूध दही और मक्खन की इतनी प्रचुरता थी कि न केवल खाने पीने और भोजन बनाने के लिए पर्याप्त था, अपितु उत्सव में बिना रोक टोक के फेंका भी जाता था। मानव समाज में दूध दही मक्खन और ऐसे पदार्थों की चाहे जितनी मात्रा प्रयुक्त की जाए, इस पर कोई रोक टोक रोकना थी। हर व्यक्ति के पास दूध का प्रचुर संग्रह था और इससे नाना व्यंजन बनाकर लोग प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ रहते और कृष्ण भावनामृत का जीवन बिताते थे। इसके बाद उदारचेता महाराज नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र आभूषण और गौएं दान में दी। इस तरह उन्होंने अपने पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा, यानी पुत्र के कल्याण के लिए। नंद महाराज को इतनी चिंता है, कृष्ण के कल्याण के लिए जो है ब्राह्मणों को तो 20 लाख गौएं दान दी थी, उसके ऊपर और दे रहे हैं, सोचो। इसलिए महामना कहा गया। नंद महाराज का कितना उदार मन है, 20 लाख गौएं सजा करके, रत्नों से सोने से सजा करके ब्राह्मणों को दान देने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए और ग्वालों को भी दान दे रहे हैं। किस लिए, किस लिए दान दे रहे हैं? कृष्ण के कल्याण के लिए, उनको कृष्ण के कल्याण की चिंता है। इस तरह उन्होंने अपने पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा। उन्होंने सूतों मागधों बंदियों को और अन्य वृत्ति वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। इतना दान दिया नंद महाराज ने, इतना दान दिया, भिखारियों को भी इतना दान दिया, रत्न और सोना इतना दान दिया कि वे ले नहीं जा पा रहे थे। जब वो ले जाते थे तो रास्ते में सो जाते थे, थक जाते थे, विश्राम करते थे, फिर उठाते थे, फिर इस तरह से थक थक करके जो है ना वो लेके गए। इतना दान दिया नंद महाराज ने। नंदो महामना सेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सोत मांगज वंदेभ्यो येन्ये विद्योपजीवना तैसे कामेर दीनात्मा यथोचितम अभूजयन विष्णुराराधनार्थाय सुपुत्रस्योदयाय च। अब बलदेव की माता रोहिणी, आप जानते हैं बलदेव की माता रोहिणी कहाँ पर हैं? यशोदा के भवन में है। बलराम की माता हैं रोहिणी, यशोदा के भवन में है। तो नंद और यशोदा ने उनका बहुत अभिनंदन किया, बहुत सम्मान किया रोहिणी का और दिव्य वस्त्र उनको दिए रोहिणी जी को धारण करने के लिए और रोहिणी जी को काम दिया क्या, अतिथियों का स्वागत करने के लिए। जो स्त्रियां उनके यशोदा के महल में आई हैं, अतिथि स्त्रियां हैं, उनका स्वागत करती हैं रोहिणी जी और इधर उधर घूम रही हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदितं वितरन् दिव्यवासहस्रं कंठाभरणे भूषितां। तात्पर्य में लिखा है, बलदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को भी उनके पुत्र बलदेव समेत नंद महाराज की देखरेख में रखा गया था, क्योंकि उनके पति को कंस ने बंदी बना लिया था, अतः वे अधिक प्रसन्न ना थी। किंतु कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात नंदोत्सव पर जब नंद महाराज अन्यों को वस्त्र और गहने दान में दे रहे थे तो उन्होंने रोहिणी को भी दिव्य वस्त्र और गहने दिए जिससे वे उत्सव में सम्मिलित हो सके। इस तरह भी अतिथि रूप में आई, स्त्रियों का स्वागत करने में व्यस्त थी। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रोहिणी के पति बसदेव जी चूंकि मथुरा में है, तो ऐसी हालत में रोहिणी को सुंदर वस्त्र आभूषण धारण नहीं करने चाहिए। शिष्टाचार के अनुसार जब पत्नी जो है पति से दूर होती है या पति पत्नी से दूर रहता है तो पत्नी को जो है अपनी सजावट नहीं करनी चाहिए, है? ये शिष्टाचार है। लेकिन आज के दिन जो है वो जो नियम है वो तोड़ दिया। कृष्ण के जन्मोत्सव में इससे शिक्षा मिलती है, हम लोगों को सीखना चाहिए क्या है, है ना, क्या नियम है। जन्माष्टमी के दिन जो है ना वो सब नियम तोड़ दिए जाते हैं, उत्सव मनाना चाहिए और सब जगह सजावट होनी चाहिए, अपने शरीर की और अपने मन की और अपनी आत्मा की और अपने घर की, अपने पड़ोस की, अपने गांव की, हर जगह सजावट होनी चाहिए जन्माष्टमी को। बाकी सब नियम तोड़ दिए जाते हैं। हाँ, हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर भगवान और उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है, फलता उसमें समस्त संपदा सदैव निहित है। फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वो घर लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थली बन गया, लक्ष्मी जी के खेलने का स्थान बन गया नंद महाराज का ब्रज। सब प्रकार की संपत्ति आ गई वहाँ पर। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजा सर्वे समृद्धि मां हरिर्निवास आत्मगुण रमा क्रीडम अभून। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, तात्पर्य लिखा है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम दिव्यमानम गोविंद मादि पुरुषम तम अहम भजामि। कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, कृष्ण जहां भी जाते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती हैं। लक्ष्मियों में प्रमुख हैं कौन, श्रीमती राधा रानी। अतः ब्रज भूमि में कृष्ण के आविर्भाव से यह सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी शीघ्र ही वहां प्रकट होने वाली है। नंद महाराज का धाम पहले ही ऐश्वर्यवान था और जब से कृष्ण प्रकट हुए वो सभी प्रकार से ऐश्वर्यशाली बन गया है। तो ये हमने पाठ किया श्रीमद् भागवत से। अब एक लेख जो हमने लिखा था जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस लेख का नाम है श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए और भगवत धाम जाइए। तो लेख का नाम है श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए और भगवत धाम जाइए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाने से भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। श्री कृष्ण जितने उपदेश भगवत गीता में अर्जुन को दिए हैं उनमें सबसे अधिक व्यवहारिक और महत्वपूर्ण श्लोक है, कौन सा, चौथे अध्याय का नवा श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति सत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनः। अर्थात ही अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण दो वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं, पहला क्या है उनका जन्म और दूसरा क्या है उनका चरित्र। जो व्यक्ति इन दो बातों के दिव्य रहस्य को जान लेता है वह देह त्याग कर इस संसार में जन्म ना लेकर के सीधे श्री कृष्ण के धाम में जाता है। श्री कृष्ण का धाम एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को जाने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जीवन की वे सभी सुविधाएं हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया था कि गीता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोक यही है, क्योंकि यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण के धाम में जाने की ये सबसे अधिक सरल विधि है। हमें केवल ये जानना है कि श्री कृष्ण का जन्म इस भौतिक जगत में एक दिव्य घटना है। यद्यपि श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं और उनकी जन्म तिथियां भी मनाई जाती हैं, जैसे रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी आदि, तथा ये सभी जन्म तिथियां दिव्य हैं। फिर भी श्री कृष्ण के जन्म की तिथि इन सभी में दिव्याति दिव्य है। इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, लौकिक रूप से श्री कृष्ण के जन्म की तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी या श्री कृष्णाष्टमी ना बोलकर जन्माष्टमी ही बोला जाता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इतना लंबा बोलते नहीं लोग, कृष्णाष्टमी भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी बोलते हैं। श्री कृष्ण के नाम के बिना भी जन्माष्टमी का अर्थ श्री कृष्ण का जन्म दिवस समझा जाता है, जबकि अन्य अवतारों की जन्मतिथि में ऐसा नहीं है। रामनवमी को जन्मनवमी नहीं बोलते, जैसे जन्माष्टमी बोलते हैं ऐसे जन्मनवमी तो नहीं बोलते, रामनवमी बोलना पड़ता है। या नरसिंह चतुर्दशी को जन्म चतुर्दशी नहीं बोलते, नरसिंह चतुर्दशी बोलना पड़ेगा। रामनवमी के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें राम का नाम ना हो तथा राम का जन्म दिवस समझा जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उन सब के नाम आवश्यक हैं यदि उनकी जन्मतिथि को समझना है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के जन्म की घटना अन्य अवतारों से विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त लोकप्रियता की दृष्टि से भी पता चलता है कि जन्माष्टमी का उत्सव संपूर्ण विश्व में जितना व्यापक है उतना अधिक अन्य उत्सव नहीं है। इसका कारण यही है कि श्री कृष्ण के धाम में जाने की एक अत्यंत सरल विधि है, जन्माष्टमी महोत्सव। जितनी अधिक धूमधाम तथा प्रसन्नता के साथ हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे उतना अधिक हम श्री कृष्ण के साथ जुड़ेंगे, और जितना अधिक हम श्री कृष्ण के साथ जुड़ते हैं उतनी अधिक संभावना होती है श्री कृष्ण के धाम में जाने की। अब हम देखेंगे यद्यपि श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव श्री कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव तो नहीं मना पाए क्योंकि वे कंस के कारागार में थे, परंतु ब्रज में नंद महाराज तथा अन्य गोपों ने श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कितने धूमधाम से मनाया। गर्ग संहिता के अनुसार, आप ध्यान दीजिए, अभी मैंने श्रीमद् भागवत से पढ़ा, अब गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता के अनुसार नंद महाराज ने इस उत्सव में 20 लाख गऊओं का दान किया, वो तो इसमें भी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 किलोमीटर लंबी भूमि में अन्न के 7 पर्वत बनाए। सोचो 3 किलोमीटर की भूमि में अन्न के 7 पर्वत बनाए और उनको रत्नों और सोने से सजा करके ब्राह्मणों को दान दिया नंद महाराज ने। नंद महाराज की जितनी गौएं थी उन सब के सींगों में सोना मढ़ा गया। 1 करोड़ गौएं थी नंद महाराज की, सबके सींगों में सोना मढ़ा गया, उनके गले में सोने की माला पहनाई गई, उन गायों के गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। ब्रज में जितने बैल थे उन सबको मोर पंखों से और फूलों से सजाया गया था। गायों के साथ जितने बछड़े थे उन सबको सोने की मालाओं से मोतियों के हारों से विभूषित किया गया था। उनके पैरों में भी मंजीर बांधे गए थे। वहां पर जितने गोप थे वे आपस में नंद के पुत्र के जन्मोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से बेहवल होकर आनंद के आंसू बहा रहे थे। वहां की माता गोपियों ने वहां की माता गोपियों ने नूपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मणिमय कुंडल, करधनी, कंठ सूत्र, हाथों के कंगन और भाल देश में बेंदियों की नई नई छटाओं से अपने को सजाया। उस समय गोप दही, दूध और घी से और गोपांगनाएं ताजे मक्खन के लोनों से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर दही की कीच मच गई। सुन रहे हो, दही का कीचड़ मच गया। नंद भवन के बाहर भी दही का कीचड़ है और अंदर भी दही का कीचड़ है, इतना एक दूसरे को दही भिगोते हैं। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसल कर गिर पड़ते थे, उस दही की कीचड़ में फिसल के गिर जाते थे। कौन? बूढ़े लोग और मोटे लोग गिर जाते थे। और दूसरे लोग खूब तालीफ पीट पीट कर हंसते थे जब गिरते थे लोग तो मोटे मोटे लोग गिरते तो दूसरे लोग हंसते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रज में नंद महाराज तथा वहां के गोपों और गोपियों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव अत्यंत हर्ष के साथ मनाया। परंतु जहां तक वसुदेव जी की बात है, यद्यपि उनके पास कोई भी उपाय नहीं था कि कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते, परंतु फिर भी उन्होंने हर्ष के मारे अपने मन में ही ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान कर दिया तथा इस बात की उन्हें चिंता भी बनी रही कि जैसे उन्हें अवसर प्राप्त हो वे वास्तविक रूप में ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान करेंगे। फिर जैसे ही कंस की मृत्यु हुई तथा वे कारागार से मुक्त हुए तो उन्होंने सर्वप्रथम यही कार्य किया। इन बातों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण का भक्त बनने के लिए हमें भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। तो ये लेख है जो मैंने जन्माष्टमी के लिए लिखा है। तो इसमें एक बात और भी मिलती है शास्त्रों में कि माता देव की चूंकि कृष्ण का जन्मदिन नहीं मना पाई तो इस बात के लिए वो जब कृष्ण से मिली थी, जब कंस की मृत्यु हुई और कृष्ण मिले तो देवकी को उस समय भी बड़ा दुख रहा कि मैंने अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मनाया। तो उन्होंने वरदान दिया, देवकी ने क्या वरदान दिया कि मैं नहीं बना पाई तेरा जन्मोत्सव, अब मैं वरदान देती हूँ कि पूरा संसार तेरा जन्मोत्सव मनाएगा। तो देवकी के इस वरदान से ही पूरे संसार भर के लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं बहुत उत्साह के साथ और बड़ी तैयारियों के साथ और बड़ी सजावट के साथ पूरा संसार मनाता है। क्यों? क्योंकि देवकी जी नहीं मना पाई, इसलिए इस कारण से। किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न के चौथे अध्याय की 9वें श्लोक में भगवान के धाम की जाने की क्या विधि है, क्या विधि है मैं आपसे पूछता हूँ। भगवान के जन्म घर में दिव्य है ये श्लोक, आप अपने कंठ हार बना लीजिए, अपने गले का हार बना लो, ठीक है, इस श्लोक को लिख करके और उसको गले में बांध लो। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतहा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनः। भगवान के धाम में जाने की बड़ी सरल विधि है, कृष्ण के जन्म और कृष्ण के कर्म ये दिव्य है, एक दिव्य घटना है ये, है ना। इस बात को अगर समझ लो, ये आश्चर्य की घटना है, ये दिव्य घटना है ना। ऐसे नहीं कि नहीं हो गया तो हो गया, ठीक है तो क्या फर्क पड़ता है, हो गया तो हो गया, हम तो अपने पुत्र का जन्म मनाएंगे, हम तो अपना जन्म मनाएंगे, है ना, है ना। लोग अपने जन्मदिन और अपने पुत्रों के जन्मदिन मनाते हैं, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का जन्मदिन मनाए क्योंकि ये है दिव्य, बाकी हमारा जन्म और हमारे कर्म ये क्या है, दुख भोगने के लिए होते हैं। हम जन्म और अपने अपने जन्म अपने कर्म से दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते और हम भी कष्ट भोगते हैं, और भगवान अपने जन्म और कर्म से स्वयं भी आनंद लेते हैं और दूसरों को भी सबको आनंद देते हैं। दिव्य हैं कृष्ण के जन्म कर्म, दिव्य हैं, है ना। कृष्ण के जन्म और कर्म को आप दिव्य समझ लोगे तो अपने जन्म और कर्म के बंधन से छूट जाओगे, है ना। हम जन्म लेते हैं तो एक बंधन है, है ना, हम कर्म करते हैं कर्म बंधन है कि नहीं, हम बंधे हुए हैं, है ना। सिर्फ जन्म बंधन से, कर्म बंधन से छूटने के लिए कृष्ण के जन्म और कृष्ण के कर्म का अगर आप जो है वर्णन करोगे, वर्णन सुनोगे तो आप जन्म कर्म के बंधन से छूट जाओगे। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद ने एक विधि बताई है जन्माष्टमी की, और क्या विधि बताई है? नहीं, यही विधि है जन्म और कर्म। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो फैला हुआ है, कृष्ण के जन्म और कर्म का ही प्रचार करना है, यही है हरे कृष्ण महामंत्र। ये जो ना कृष्ण का नाम है, कृष्ण से अलग नहीं है, ये भी कृष्ण का जन्म है, है ना, ये कृष्ण का अवतार है, है? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, तो ये भी एक अवतार है कृष्ण का। कृष्ण के बहुत से जन्म कर्म है, कृष्ण के और भी दूसरे जन्म कर्म है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम कृष्ण के अलावा और जो दूसरे अवतार हैं उनका हम ना करें, उनका भी हम जन्म कर्म, कृष्ण के और भी अवतार हैं। तो इन सब चीजों को हमें जानना चाहिए कि दिव्य हैं कृष्ण, जितने भी अवतार हैं नाम रूप कृष्ण अवतार, ये भगवान का नाम है, ये भी कृष्ण का अवतार है कलयुग में। बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका, आप लोग थोड़ा सुनिए ध्यान से, इनका प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप लोगों को जो है जानना चाहिए। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो भगवान की सत्ता पर तो विश्वास करते हैं, ये भगवान के जन्म कर्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो कृष्ण के, तो वो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते भगवान की भक्ति। तो इन्हीं को ही निराकारवादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी कहा जाता है, जिसको कि प्रभुपाद जी ने खत्म किया। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी, तो प्रभुपाद जी ने इसका खंडन किया है, निर्विशेषवाद शून्यवाद। जो भगवान के जन्म और कर्म को नहीं मानते हैं, है ना, हाँ भगवान अजन्मा है, गीता में भगवान कहते हैं अजोपि सन्नभ्य आत्मा, मैं अजन्मा हूँ, भगवान वास्तव में अजन्मा है। और वास्तव में भगवान जो है वैसे निष्क्रिय है, कि मतलब किसी प्रकार के कर्म से बंधे नहीं है, संसार के प्रपंच से जो है ना उनसे उनका कोई संबंध नहीं है, भौतिक संसार के कर्मों से उनका कोई संबंध नहीं है, जैसे उनको अजन्मा और उनको निष्क्रिय कहा जाता है ना, क्योंकि उनके ऊपर कोई जन्म का बंधन नहीं है, कोई कर्म का बंधन नहीं है इसलिए। लेकिन फिर जो उनका जन्म होता है, ये एक लीला होती है, जन्म भगवान जब जन्म की लीला करते हैं तो ये अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं, भगवान पुत्र बनते हैं, है ना, जो भक्त भगवान के पिता बनते हैं, भगवान के माता बनते हैं, वे बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है, है ना। तो ऐसे लोग जो है निराकारवादी हैं, वे भगवान में मिलना चाहते हैं, ये भगवान स्वयं बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान में मिलना या भगवान बनना, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं वो तो भगवान से बढ़कर के हो जाते हैं, भगवान के माता पिता होते हैं, भगवान के मित्र बनते हैं, और जो भगवान के मित्र हैं वो भगवान से बढ़कर के हैं। देखो भगवान अपने मित्र अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, है ना, तो भगवान बनने से क्या फायदा है? भगवान से बढ़कर के जो भक्त हैं वो भगवान से बढ़कर के होते हैं, वो जो सेवा और प्रेम का जो आदान प्रदान है भगवान के साथ में, ये भौतिक संसार की कोई चीज नहीं है कि आप समझ सको इस चीज को। इस भौतिक संसार में आप किसी की नौकरी करते हो, गुलामी करते हो, तो सुख नहीं मिलता। तो वे लोग सोचते हैं भाई भगवान की नौकरी करने में, भगवान की सेवा करने में भी उसी प्रकार का अनुभव होगा, है? तो ये जो है उनका अज्ञान है। भगवान के जन्म और भगवान के कर्म जो है ना दिव्य है, और भगवान के जन्म है, भगवान के कर्म है, लेकिन भगवान की मृत्यु नहीं है। भगवान जो है शरीर नहीं छोड़ते, भगवान बूढ़े नहीं होते, भगवान बीमार नहीं होते, भगवान जन्म लेते हैं आनंद देने के लिए, आनंद लेने के लिए, और बड़े होते हैं, शिशु लीला करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, कौमार लीला करते हैं, कौगंड लीला करते हैं, किशोर लीला करते हैं, 15 साल और 9 महीना 7.5 दिन की अवस्था तक उनका शरीर बड़ा होता है, उसके बाद स्थिर हो जाते हैं। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन उस अवस्था के बाद फिर भगवान की अवस्था बढ़ती नहीं है, वो फिर बड़े हो गए या द्वारका में गए, 16108 पत्नियों से विवाह किया और लाखों लाखों पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन वे उतने के उतने रहे। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन नवयौवनम, है ना, तो ये भगवान है, क्योंकि वृद्धावस्था के द्वारा कोई सुखी नहीं होता, कोई नहीं पाना चाहता, तो भगवान क्यों बूढ़े होंगे? मृत्यु के द्वारा कोई भी सुखी नहीं होता, तो भगवान क्यों मरेंगे, है ना। तो भगवान की जो लीलाएं हैं ये दिव्य हैं, भगवान के जन्म दिव्य हैं, इस बात को जो समझ ले वो भगवान के धाम में जाएगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।